Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। सुनते रहिए दिल से दिल तक पॉडकास्ट विद अभिनंदन जिंदल।
क्या आपको लगता है कि मेडिटेशन सीखना जरूरी है?
इस सिचुएशन में मेडिटेशन के सिवाय और कोई चैनल है ही नहीं।
स्पिरिचुअलिटी के लिए कोई एसोसिएशन का मेंबर होना जरूरी है?
हमारे पास कोई मेंबरशिप नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है और न हमारे पास कोई फॉलोअर्स होते हैं। मेडिटेशन में तीन बातों को हमें सीखना बहुत ज़रूरी है, मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है और तीसरा कर्म फिलॉसफी क्या है।
ट्रैवल बहुत करते हैं आप, लोग बहुत फॉलो भी करते हैं, फिर उनका परसेप्शन क्या है?
मैंने देखा कि आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में लोग बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, मेडिटेशन की बात में भी इंटरेस्ट ले रहे हैं।
हम चाहते हैं किसी और को फॉलो करने के लिए, किसी और के लिए, सिर्फ एक के लिए, और हमें स्टूडेंट बनना पड़ता है एक पर्टिकुलर किसी इंसान का।
आज तक तो मैं किसी और संस्था में नहीं गई हूँ, क्योंकि जहाँ से प्राप्ति होती है इंसान चाहता है कि उसको और हम देखते चलें, आगे बढ़ते चलें।
तो स्वागत है आप सभी का दिल से दिल तक के एक नए एपिसोड में। आज है हमारे साथ एडिशनल चीफ ऑफ ब्रह्मकुमारीज जयंती दीदी। ओम शांति दीदी।
ओम शांति, नमस्कार।
सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे मेडिटेशन के बारे में
जी,
कि मेडिटेशन जो है आजकल लाइफस्टाइल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है, लेकिन मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो एक तरह से अब लोग ये भी कहने लग गए कि इसको सीखना पड़ता है। वेयर एज मेडिटेशन इज समथिंग वेयर वी कैन कनेक्ट टू गॉड, सो इट हैज टू बी, आई मीन वो नेचुरल एक चीज हो सकती है। सो क्या आपको लगता है कि मेडिटेशन सीखना जरूरी है?
मुझे लगता है कि आज के संसार में जहाँ पर हम देखते हैं कि कितना तनाव है, कितना दुख के कारण बनते हैं और कितना मानव के अंदर डर आ गया है कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है, तो इस सिचुएशन में मेडिटेशन के सिवाय और कोई चाना है ही नहीं, कोई रास्ता ही नहीं दिखता है जिससे लोगों को कुछ मदद मिल सके। तो मैं तो कहेंगी कि छोटे बड़े बूढ़े जवान सब के लिए मेडिटेशन बहुत ही आवश्यक है, और कई समझते हैं कि एक स्वाभाविक बात हो जाती, परंतु आप सोचो कि छोटी सी बात से बड़ी बात तक आपको रोटी बनाना है तो सीखना पड़ता है, तरीका क्या है, आपको कंप्यूटर सीखना है वो सीखना पड़ता है। तो इस तरह से अपने मन के अंदर किस प्रकार से संकल्प चल रहे हैं और उनको किस तरह से हम डाइवर्ट करके मेडिटेशन में ला सकते हैं, वो भी एक सीखने की बात होती। तो ये स्वाभाविक बात नहीं होती, परंतु हाँ, जितना जितना सीख करके उसका अभ्यास करते हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि ये एक स्वाभाविक बात है।
तो दीदी, जैसे मेडिटेशन के बारे में आपने बताया कि सीखना बहुत ज़रूरी है, तो क्या स्पिरिचुअलिटी के लिए अगर जैसे हमें कोई किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना ज़रूरी होता है, जैसे अगर जैसे लोग कहते हैं कि हम इनको फॉलो करते हैं, वी आर वेरी स्पिरिचुअल, और स्पिरिचुअलिटी के लिए कोई एसोसिएशन का मेंबर होना ज़रूरी होता है?
हमारे पास कोई मेंबरशिप नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है और न हमारे पास कोई फॉलोअर्स होते हैं। हम कहते हैं अपने को ईश्वरीय विश्वविद्यालय, मतलब कि एक सीखने की भावना जिसको मन में है, जिसको कुछ अंदर सत्यता का खोज है, वो आकर के यहाँ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, और बिल्कुल फ्री शिक्षा है, हम किसी को भी चार्ज नहीं करते हैं। तो उसमें मैं कहेंगी कि जितनी हर एक के पास नॉलेज है उतना उसके जीवन में फायदा होता, कोई भी प्रकार की नॉलेज। तो मेडिटेशन में तीन बातों को हमें सीखना बहुत ज़रूरी है, मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है और तीसरा कर्म फिलॉसफी क्या है। तो एसोसिएशन को ज्वाइन करने की बात नहीं है, परंतु ये सब बातें सीख करके फिर उनको किस तरह से जीवन में उसका प्रयोग करना है वो शिक्षा प्राप्त होती।
मतलब जैसे आप ये चीज़ मानते हैं दीदी कि किसी भी कोई पर्टिकुलर एसोसिएशन के साथ हम उसको फॉलो करें या उसका पार्ट बने ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है?
नहीं, मैं कहेंगी कि जहाँ से आपको नॉलेज मिलती है आप ट्राई करो
जी,
आप एक्सपेरिमेंट करके देखो, आपको वो चीज़ काम की है तो आप यूज़ करो, तो यहाँ पर भी हम ऑफर करते हैं इंट्रोडक्शन कोर्स मेडिटेशन का
जी।
और फिर हम कहते हैं कि आप उसका प्रयोग करो और यदि आपको पसंद आए फिर तो लाइफ लॉन्ग कोर्स है, ऐसे नहीं है कि 7 दिन में कोई फिनिश हो जाता। परंतु एक राह किस तरह से हो सकती है हमारी जीवन में, हम कहाँ तक जा सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, वो जबकि सीखने को मिलता तो फिर तो कई लोग कहेंगे कि हाँ ये तो बातें ऐसी है जो हम हर रोज स्टडी करेंगे तो हमारी बुद्धि में और ही अच्छी बातें आती रहेंगी और हमारी जीवन और ही श्रेष्ठ बनती जाएंगी।
जी दीदी जी, बड़ी अच्छी चीज़ बताई आपने कि जैसे यहाँ पे कोर्स होता है 7 डेज का और उसको फिर हम अपनी नॉर्मल लाइफ में रूटीन में फॉलो कर सकते हैं, बट हम जैसे हम इस इंटेंशन से जाते हैं कि हम वहाँ मेडिटेशन सीखने जाएंगे ताकि हमारी लाइफ को हम इम्प्रूव कर सकें, अच्छे से जी सकें, जाते हम इस इंटेंशन से, लेकिन जैसे ही हम जाना स्टार्ट करते हैं तो ये किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की बात नहीं हो रही। हम नॉर्मली एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ तो उसमें क्या होता है दीदी कि उसमें बहुत सारे इफ़ एंड बट्स आ जाते हैं, जैसे देन कंडीशंस आ जाती हैं, जैसे कि आपको अच्छा लगा तो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, फिर आपको डेली आना पड़ता है, फिर जिस सेंटर में हम जाते हैं उस सेंटर में कौन वहाँ का हेड है उनकी बातें माननी पड़ती है, हम जाते हैं किसी और को फॉलो करने के लिए, किसी और के लिए, सिर्फ एक के लिए, और हमें स्टूडेंट बनना पड़ता है एक पर्टिकुलर किसी इंसान का, फिर उनके थॉट प्रोसेस जो होते हैं उनके थॉट प्रोसेस को मैच करना पड़ता है, तो क्या ये ठीक है?
देखो अभी जैसे मैंने शुरू किया तो मेरा संपर्क दादी जानकी के साथ था उन दिनों में, दिस इज 1968, तो उस समय मैं दादी के पास गई थी तो दादी ने मुझे अच्छी अच्छी बातें सुनाई, मुझे बहुत इंटरेस्ट लगा, तो फिर दादी ने कहा आप कोर्स करो, तो मैंने कोर्स किया और फिर कोर्स के बाद मुझे लगा कि मुझे अभी यदि इन बातों का अनुभव भी हो रहा है, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होने लगे और मुझे बहुत क्लैरिटी आ रही थी, तो फिर आज तक फिर मैं किसी और संस्था में नहीं गई हूँ कि मुझे कहाँ और जगह से कुछ और प्राप्ति होंगी, क्योंकि जहाँ से प्राप्ति होती है इंसान चाहता है कि उसको और हम देखते चलें, आगे बढ़ते चलें, तो हाँ उसमें फिर अपने जीवन के लिए, संस्था के बेनिफिट के लिए नहीं परंतु अपने जीवन के लिए कुछ वो नियम बताते हैं, तो मैं उसको रूल्स रेगुलेशंस शब्द भी नहीं कहेंगी, मैं कहेंगी कि मानो जैसे मैंने पूछा मेडिटेशन के लिए किस बात का ध्यान रखना चाहिए, तो उन्होंने कहा सवेरे उठना, मेडिटेशन करना सबसे बढ़िया होता क्योंकि संसार का वातावरण शांत होता, मन की भी शांति होती। फिर मैं वेजिटेरियन पहले से ही थी तो वो कोई बड़ी बात नहीं थी, परंतु फिर साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जितना आप अपने टाइम टेबल को ठीक रखेंगे उतना आपको प्राप्ति होंगी। तो सवेरे यदि आपको 4 बजे उठना है तो लेट नाइट पार्टीज का तो ऐसे बात दोनों तरफ से तो नहीं हो पाता, तो मुझे चॉइस थी मैं अभी क्या चाहती हूँ, क्या मैं अमृत वेला जो 4 बजे का योग है वो करनी चाहती हूँ, या मेरी प्रेफरेंस है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कॉफ़ी पीने जाऊँ शाम को और चिट चैट करने बैठूँ तो 10-11 बज जाते, तो फिर मैं 4 बजे के लिए कैसे उठ सकेंगी। तो हर बात में आपको समझ देंगे कि ये बात करने से फ़ायदा क्या है, इस बात करने से नुकसान क्या है, तो फिर आप खुद अपने लिए चूज़ करें कि मुझे अपने जीवन के लिए क्या चाहिए, तो अपनी चॉइस होती है। परंतु मानो कि मुझे मालूम ही नहीं है अमृत वेले का, तो फिर मैं तो कहेंगी कि हाँ मुझे फ्रेंड्स की कंपनी बहुत अच्छी लगती है, अच्छी अच्छी बातें हम सुनते हैं बोलते हैं, तो फिर तो मैं 10-11 बजे तक भी बाहर रहेंगे। परंतु जब मुझे पता चला कि अमृत वेले के योग की प्राप्ति क्या है तो फिर मेरी चॉइस होती है कि वो मैं करूँ। तो हर बात में स्पिरिचुअल नॉलेज ये नहीं कहता ये करो ये ना करो, स्पिरिचुअल नॉलेज का मतलब है आपको हर बात का चॉइसेस आपके जीवन में क्या संभव है आप वो देखो और फिर आप खुद अपना निर्णय करो कि मुझे अपने लिए क्या पसंद है।
जी बिल्कुल, आपने जैसे आपने बहुत अच्छी चॉइस आपने अपने लिए एक लाइफस्टाइल चूज किया। आजकल का यूथ बड़ा स्मार्ट है, वो बहुत अच्छी एनर्जी है और अच्छी जगह चैनलाइज भी करना चाहते हैं। बट क्या आपको ऐसा लगता है कि जो उस टाइम पे जैसे सब एक गाइड करने के लिए थे, आज के टाइम पे उसी कन्विक्शन के साथ और उसी ऑनेस्टी के साथ अभी भी वैसे टीचर्स हैं?
मेरा बहुत भाग्य बड़ा था कि न केवल दादी जानकी को मैं बहुत नज़दीक संबंध में रही, परंतु ब्रह्मा बाबू को भी मैं जानती थी, मम्मा से भी मैं मिली थी। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, जैसे ब्रह्मा बाबा थे अब कहाँ पर मिलेंगे, जैसे हमारी मम्मा मातेश्वरी जी थी ऐसे भी तो कोई नहीं है। तो एक एक व्यक्ति की जो इंडिविजुअल कैपेसिटी है वो तो बिल्कुल हर एक की अलग अलग है। दादी प्रकाशमणि हमको दूसरी नहीं मिलेंगी, दादी जानकी हमको दूसरी नहीं मिलेंगी, परंतु जो अपने पास टीचिंग्स है, जो हम हर रोज स्टडी करते हैं, वो है निराकार परमात्मा ने जो ब्रह्मा बाबा के द्वारा सुनाई है, और फिर ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने पर फिर हमें ट्रांस मैसेंजर्स के थ्रू भी दादी गुलजार जो रहे बहुत वर्षों तक, 49 ईयर्स तक, उनके द्वारा भी हमें टीचिंग्स मिलते रहे। तो उसको हम कहते हैं मुरली। तो मुरली का वैसे दिखाते हैं कि कृष्ण जब मुरली बजाते थे तो गोप गोपियाँ मस्ती से रास करते थे, परंतु वास्तव में जब ज्ञान हम सुनते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति कुछ भी हो परंतु वो फिर उससे ऊपर आ जाती है, और जो भी आपके जीवन में बातें आ रही है उसको एक नए दृष्टिकोण से देखने को मिलता कि हमारी वृत्ति, हमारी दृष्टि बदल जाती है वो मुरली सुन करके। तो मुरली की जो तान है म्यूजिक पर, किसकी पसंद ये होंगी किसकी पसंद वो होंगी, इट्स पर्सनल चॉइस, परंतु जो सच्ची मुरली है वो है ज्ञान मुरली। तो हर सेंटर पर सारे विश्व भर में 120 देशों में जो मुरली चलती है ये दो चलती है, शिव बाबा ने जो ब्रह्मा बाबा के तन द्वारा सुनाई और बाप दादा ने जो दादी गुलजार के द्वारा हमें सुनाई। तो फाउंडेशन ज्ञान का है मुरली, उसमें पर्सनालिटीज जो भी है उसमें सेकेंडरी बात आती है, फिर मुझे जहाँ पर पर्सनालिटी मैच होती है मैं वहाँ पर और वहाँ पर सेवा में कुछ अपना समय देने चाहूँ, अपनी स्किल्स देने चाहूँ, ठीक है हो सकता, और यदि इस पर्सनालिटी मैच ना भी हो सकती, परंतु जो सवेरे की मुरली चलती है मैं वहाँ पर जा करके वो मुरली सुनूं, उसकी नोट्स लूं, उसको मैं जीवन में धारण करूं, तो भी हमारी जीवन बहुत ऊंची बहुत श्रेष्ठ बन सकती। फिर आप जबकि उस सेंटर से भी कनेक्शन में रह करके फिर आप माउंट आबू के कनेक्शन में आते हैं, तो वहाँ पर तो अभी भी बहुत सुंदर पर्सनालिटीज है जिन्हों के साथ आप कनेक्शन जोड़ कर जो आप सेवा करने चाहो उस सेवा में आप लग सकते।
हम ट्रैवल बहुत करते हैं, आपको लोग बहुत फॉलो भी करते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोगों को आप मिलते हैं, उनमें से फिर उनका परसेप्शन क्या है पर्टिकुलरली ब्रह्म कुमारी इसको लेके?
जब मैंने ये ज्ञान लिया, उससे पहले तो मैं लंदन में ही रहती थी, पर सारी पढ़ाई वगैरह मेरी वहाँ ही हुई थी, तो वेस्टर्न कल्चर से तो मैं अच्छी जान पहचान वाली थी, तो भारत में आ करके ये एक नई प्रकार की कल्चर सीखनी पड़े, नॉट जस्ट भारत का कल्चर परंतु उसमें भी हम कहेंगे जो आदि सनातन देवता धर्म का कल्चर है, जो आदि का था, आज के बॉलीवुड का कल्चर नहीं परंतु जो ओरिजिनल कल्चर जिसमें स्पिरिचुअलिटी भी आती। फिर मुझे कुछ समय के बाद कहा गया कि लंदन में सेवाएं हैं, आप वहां पर जाएं। तो वहां पर पहले तो मुझे इतना अनुभव नहीं था, परंतु फिर धीरे धीरे समझती गई कि इन्हों को क्या समझ में आता है या नहीं समझ में आता है। तो फिर मैंने देखा कि आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में लोग बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं और वो बातें वो सुनने चाहते हैं, मेडिटेशन की बात में भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। बाकी कई थे जिन्हों को कर्म फिलॉसफी की बात का इंटरेस्ट था, परंतु फिर उसका कनेक्शन बनता है पुनर्जन्म के साथ, तो वो फिर इतना नहीं समझ पाते थे। फिर क्या हुआ कि 1971 में वहाँ पर सेंटर खुला और फिर 1974 में दादी जानकी वहाँ पर आई। और दादी जानकी का इतना ब्रॉड माइंड था, इतनी बेहद की बुद्धि थी, जो जिस तरह से जो अपने पास विदेशी आते थे उनको न सिर्फ ज्ञान सुनाती थी परंतु ज्ञान का एप्लीकेशन जीवन में किस तरह से होता, जो वो फिर जब ट्राई करते थे वो अपने जीवन में बहुत प्राप्ति अनुभव करते थे। तो फिर दादी की परमात्मा का जादू कहेंगे, परंतु दादी ऐसे इंस्ट्रूमेंट थी जो ज्ञान को वो हर कल्चर के साथ वो कनेक्शन जोड़ के बताती थी। और मेन तो उसकी जीवन में वो ज्ञान नज़र आता था कि उसकी जीवन में कैसे वो स्टेबल माइंड है, कैसे वो बिल्कुल हर बात को गहराई से समझ करके औरों को बता रही है, कैसे उसने अनुभव से अपने जीवन में धारण किए थे। तो मैंने देखा कि आज जो मेजॉरिटी टीचर्स है हमारी विदेश में, जो ओरिजिनल टीचर्स, वो दादी जानकी से ट्रेनिंग लेकर के वो अभी अपने देशों की सेवा कर रहे हैं। और हाँ, हमारी ट्रैवलिंग तो कई बार सारे विश्व का चक्कर लगाई ही है, तो उनका कनेक्शन दादी के कारण फिर हमारे साथ भी बन गया था, क्योंकि पहले कुछ वर्षों तक तो मैं ही दादी के लिए ट्रांसलेट करती थी। तो दादी से बहुत कुछ सीखने को मिला, न सिर्फ ईस्टर्न कल्चर वेस्टर्न कल्चर, परंतु उससे हायर जो स्पिरिचुअल कल्चर है जो वो लोग भी चाहते हैं। तो अभी अपने जो भी सेंटर्स है विश्व भर में, मजॉरिटी सेंटर्स अभी लोकल लोग ही चला रहे हैं, वो भाषा जानते हैं, कल्चर जानते हैं, परंतु जो वो मेन टीचर्स है बहुत करके उन्होंने ट्रेनिंग या तो दादी जानकी से ली या तो जगदीश भाई से ली, ऐसे जो हमारे सीनियर्स है उनके बहुत घनिष्ठ संबंध में आकर के उन्होंने सीखा। तो अभी तो वही अपने देश को संभाल रहे हैं, परंतु उनका कनेक्शन माउंट आबू से बहुत सुंदर ढंग से होता। और वैसे भी हमारा सिस्टम 1986 से लेकर ऐसे बना हुआ है, जो न्यूयॉर्क संभालता है अमेरिकास को इंक्लूडिंग कैरेबियन, लंदन संभालता है यूरोप और मिडल ईस्ट को और यूके, और फिर नैरोबी संभालता है सारे अफ्रीका के देशों को, मॉस्को एंड सेंट पीटर्सबर्ग दोनों संभालते हैं सारा रशिया और CIS फेडरेशन को, और फिर सिडनी संभालता है अपने ऑस्ट्रेलिया एशिया पैसिफिक वो सारी एरिया को। तो इस तरह से लोकल लोग संभालते हैं, परंतु इन स्थानों का जिन्होंने मैंने नाम लिया वहाँ पर सीनियर भारत के टीचर्स हैं जो वो फिर कोऑर्डिनेट करते हैं, और फिर माउंट आबू से भी कनेक्शन बना रहता। तो स्पिरिचुअल हिसाब से तो मैंने बताया मुरली सबका आधार, हम सब एक ही दिन पर, बेशक टाइम डिफरेंस होता परंतु एक ही दिन पर हम वही मुरली सब स्टडी करते हैं, तो वो एक लिंक बनी रहती है, जुड़ी हुई है। और फिर प्रैक्टिकल सेवा के संबंध से लोकल कायदे कानून क्या होते हैं तो वो सब लोकल पीपल ही जानते हैं ज़्यादा, परंतु फिर उनका स्पिरिचुअल रिसोर्स जिसको हम रीजनल कोऑर्डिनेटर कहते हैं RC, वो RCs है, और फिर सबका कनेक्शन माउंट आबू से।
दीदी, जैसे आप एडिशनल चीफ हैं ब्रह्मा कुमारीज के, और ब्रह्मा कुमारीज एक ऐसी इंस्टीट्यूट है जो जिसको लोग बहुत फॉलो करते हैं, पीपल आर वेरी मच अवेयर अबाउट ब्रह्मा कुमारीज। पर ब्रह्मा कुमारीज जब स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे जो प्योरिटी थी, जो इंटेंशन थी, जिस तरह के मेंबर्स थे, और अब आप एडिशनल चीफ भी हैं, इट्स बीन अ लॉन्ग लॉन्ग जर्नी, सो एंड अ ब्यूटीफुल जर्नी एज वेल। सो दीदी, क्या आपको लगता है कि इतने काफ़ी 50-60 साल से ज़्यादा ही काफ़ी वक्त हो चुका है, तो क्या वो प्योरिटी जो ब्रह्मा कुमारी जिस चीज़ के लिए जानी जाती है ये संस्था, क्या वो अभी भी एग्जिस्ट करती है उस लेवल पे?
जिस समय 350 लोग संस्था की स्थापना के समय थे, उन्होंने भी सब तो सेम क्वालिटी के नहीं होंगे, परंतु हम देखेंगे लीडर्स को। और फिर जैसे स्कूल, आप स्कूल में सिर्फ स्टूडेंट्स को नहीं देखेंगे, आप प्रिंसिपल को देखेंगे कि उसकी वैल्यूज क्या है, उसकी जीवन क्या है, आदात। फिर यस ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स में कई हैं जो उसको उस क्वालिटी से फॉलो करेंगे और कई फिर नंबर वाइज। तो इसी तरह से जो आज भी संस्था है 1 मिलियन से अधिक जुड़े हुए हैं, जिसमें मैं कहेंगी कि सब प्योरिटी के नियमों को फॉलो करते, परंतु जो संस्था के लीडर्स हैं हमारे दादी जानकी, दादी प्रकाशमणि, जिस तरह से उन्होंने जीवन में हम सबको वो धारणाएं सिखाई है, मैं कहेंगी कि हाँ, जितना तक हो सके हम वो प्योरिटी को फॉलो कर रहे हैं। और फिर जो भी स्टूडेंट्स आती हैं, मानो कि जैसे लंदन में, मैं कहेंगी यूके की बात, 2000 पीपल आते हैं ऑन अ डेली बेसिस किसी न किसी सेंटर पर। 44 सेंटर्स है यूके में, तो कहाँ न कहाँ वो जाते हैं, जुड़े हुए हैं और फॉलो करते हैं। परंतु 2000 में से, हाँ, प्योरिटी मीन्स सेलेबसी फॉलो कर ही रहे हैं, परंतु बाकी उनकी इंटरनल स्थिति क्या है, इट मस्ट बी नंबर वाइज, इट कांट ऑलवेज बी द सेम। परंतु जो यूके में भी मुख्य लोग हैं, जो हमारी टीम बनी हुई है, हाँ, मैं उनको तो अच्छी तरह से, कईयों को 50 ईयर्स से जानती हूँ, कईयों को 40 ईयर्स से जानती हूँ, तो मैं जानती हूँ कि उनकी लेवल क्या है, क्वालिटी क्या है, कमिटमेंट क्या है, फेथ क्या है। तो हर स्थान पर इस तरह से चल ही रहा है। परंतु 1 मिलियन पीपल जो हम कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हुए हैं, उनों के लिए तो मैं कहेंगी कि हाँ, सब सेलिबसी और सात्विक डाइट तो फॉलो करते ही हैं, बाकी हर एक अपना पुरुषार्थ जानता है।
फिर दीदी, सबसे मेन चीज़ जो होती है, तो एक बड़ी अच्छी चीज़ है सेलिबसी हो गई और आपका जो पुरुषार्थ हो गया, सुबह उठ के मुरली सुनना, सब फॉलो करना बहुत मुश्किल चीज़ है उसी इंटेंसिटी से, उसी ऑनेस्टी से, वो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन उसको सिर्फ उसको यूज़ करके सिर्फ अपनी फैन फॉलोइंग लेना और जो मेन इंटेंशन जो है उसको भूल जाना, इससे बड़ा तो पाप कुछ हो ही नहीं सकता। आई मीन, काफ़ी लोग कर रहे हैं, मैं किसी पर्टिकुलर इंसान या किसी कम्युनिटी की बात कर ही नहीं रहा हूँ, बट सब जानते हैं कि ऐसी चीज़ें हो रही, इसलिए ही लोग इंस्टीट्यूट्स में आते ज़रूर हैं लेकिन फिर वापस भी चले आते हैं।
मेन बात जो हमारी फाउंडेशन है वो है, मैं खुद को जानूं और जो मुझे उसका पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए उस पर मैं ध्यान दूं, और वो होता है परमात्मा के संबंध द्वारा। जब हमें परमात्मा की जानकारी ही नहीं है तो परमात्मा के साथ हमारा संबंध ठीक नहीं हो पाता। आप देखेंगे कि आत्मा के बारे में जो स्पष्टीकरण यहाँ प्राप्त होता, मैं इतने वर्षों में 1968 से ये बातें स्टडी कर रही हूँ, फॉलो कर रही हूँ, तो उसमें आप सोचो कि विश्व भर के जो भी मुख्य मुख्य धर्म है उन सब का किसी न किसी प्रकार से स्टडी करें, या कुछ थोड़ी बहुत जानकारी तो प्राप्त हुई ही है। मानो कि जो 3 मेन धर्म है, ओल्ड टेस्टमेंट न्यू टेस्टमेंट के आधार पर चलते हैं, यहूदी, क्रिश्चियन और फिर साथ साथ इस्लाम, तो इनों का आधार ये 2 स्क्रिप्चर्स है। तो उसमें उन्होंने कभी भी सेल्फ को की बातें, आत्मा क्या है, उसका स्पष्टीकरण नहीं किया है उसमें। और ही उन्होंने ये बताया है कि ये टॉपिक तो मानव के समझ से बाहर है, तो फिर उन्होंने उस टॉपिक को छोड़ दिया है। फिर आती है परमात्मा की टॉपिक। परमात्मा की टॉपिक में भी आप देखेंगे एक बात बहुत प्रचलित है भारत में चाहे विश्व में, कोई भी श्री कृष्ण श्री राम किसको भी माने, वो उसमें पार्ट, इट्स पार्ट ऑफ द मिक्सचर, परंतु मेन बात जो है कि परमात्मा सर्व में व्यापक है। और शिव बाबा, जिसको हम परमात्मा को शिव बाबा कहते हैं, निराकार, जिसका स्वरूप ज्योति स्वरूप है, शिव कल्याणकारी है, जो शिव बाबा ने आकर के हमें खुद की पहचान दी है कि मैं कौन हूँ, जिस आधार पर राजयोग का अभ्यास हम आरम्भ करते हैं, मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, ये हमारी मेन सब्जेक्ट है। ज्ञान की जानकारी स्पष्टीकरण फाउंडेशन है, उस आधार पर योग क्या है, जितना जितना हम उस बात पर ध्यान देते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उतना आत्मा के अंदर फिर से जो पहले शक्ति थी, जो शक्ति खर्च हो चुकी है, आपका टेलीफोन अब रिचार्ज ना करो तो कुछ काम का नहीं। इस तरह से आत्मा बेशक दान करे और कर्म कांड करे, रिचुअल्स करे, तीर्थों पर जाए, कुछ भी करे, जब तक कि स्वयं की पहचान, परमात्मा की पहचान, वो क्लैरिटी नहीं है, तब तक वो कनेक्शन नहीं जुट सकता। और जब कनेक्शन ही नहीं है तो आत्मा की बैटरी की रिचार्ज नहीं हुई है, जिस कारण से कितने भी धर्म आत्माएं आए हैं, अच्छी अच्छी बातें बताई है, जीवन के लिए शिक्षाएं बहुत अच्छी दी है, परंतु आज धर्म नाम का रहा। हर धर्म के लिए मैं कहेंगी, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल्स देने की जरूरत नहीं है, आप देख ही रहे हैं आज का समय कौन सा चल रहा है। अति धर्म गिलाने का समय, अपने धर्म के नाम पर क्या क्या हो रहा है आपके सामने विश्व का नक्शा है। तो बेशक उन्होंने वो हमें शिक्षाएं दी, परंतु ये नहीं सिखाया परमात्मा कौन है और कैसे आत्मा का परमात्मा से जोड़ हो सकता है, जिसका नाम ही है योग। तो शिव बाबा जब सृष्टि पर आते हैं, जिसका वायदा है गीता के अंदर, जब जब धर्म की अति गिलानी होती, मैं अवतरित होकर के एक साधारण ब्राह्मण बूढ़े तन में आकर के ज्ञान देता हूँ, तो वो हम मानते हैं कि वो ये कार्य चल रहा, जिसमें जब आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध जुटता है तो ही फिर मन की सच्चाई होती है, दिल की सफाई होती है, और जो आप कहते हो वो बिल्कुल सही बात, फिर हम सच्चाई से उस मार्ग पर चल सकते। तो मैं कहेंगी कि जो मानो की बुरी आदतें छोड़ना, हमने किसको कहते हैं कि आप शराब छोड़ो, आप ड्रग्स छोड़ो, कुछ दिनों के योग अभ्यास के बाद वो खुद ही जो नशीली चीज़ें हैं वो खुद ही सोचते हैं ये मेरे काम की चीज़ नहीं है, और वो छोड़ देते। और न केवल वो छोड़ते हैं, परंतु उस बात को वो पक्का रखते हैं अपने जीवन भर। हाँ, आउट ऑफ 100 people मे बी इट्स 90 people हु कैन डू दैट। कुछ ज़रूर होंगे जो फिर वापस अपनी उन आदतों को स्वीकार कर लेते हैं, परंतु मजॉरिटी वो बिल्कुल उस नियम का पालन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर योग के द्वारा वो शक्ति प्राप्त होती है, जिससे उनके इंटरनल वृत्ति बदल जाती। तो जब वो वृत्ति बदल जाती है, दृष्टिकोण बदल जाता है, तो फिर जो चॉइस के बाद मैंने अपने दिल से सच्चाई से चूज किया कि मुझे क्या काम की चीज़ है और मुझे जो न काम की चीज़ है मुझे कैसे फिनिश करनी है, वो उनके अंदर शक्ति आती। हमारी एक छोटी सी आदत स्मोकिंग, मानो कि किसको 10 साल की आदत है, किसको 3 साल की आदत है, किचरी है, परंतु वो एक आदत ऐसे पकड़ लेती है जो हर न्यू ईयर डे पर वो सोचते हैं कि अभी हम स्मोकिंग बंद करेंगे। 1 सप्ताह, 1 मास, इतना तक ही चलता। फिर जो संग होगा, जो वातावरण होगा, किसने कहा चलो यार क्या नुकसान होता, और शुरू कर लेते। परंतु यहाँ पर जो, और न्यू ईयर डे की बात नहीं होती, जिस खरी जिसको ये समझ में आता कि ये मेरे फायदे की चीज़ है, ये मेरे नुकसान की चीज़ है, तो वो खुद अपना निर्णय करते। हम किसी को भी कहते नहीं है कि आप ये करो। हमको मालूम है कि जब अंदर की प्रेरणा होती है तो वो अपने आप ही काम करेंगे, तो वो फिर उस मार्ग पर चल पड़ते।
तो दीदी, जैसे जितनी भी आपने चीज़ें बताई, क्या ये सारी चीज़ें आज भी ब्रह्म कुमारीज इंस्टीट्यूट में एग्जिस्ट करती हैं?
बिल्कुल। अभी तो गवर्नमेंट के साथ हमारी MOU भी साइन हो चुकी है लास्ट ईयर से, कि ये जो आप नशा बंद की बात करते हो, आप उसका अधिक प्रचार करो। तो आपके पास हम स्टेटिस्टिक्स वो दिखा सकते हैं कितने लोगों ने ये बातें सुनकर फिर उसके लिए अपना खुद संकल्प किया है कि हाँ हम ये बातें छोड़ेंगे, और फिर उसको आज तक भी पालन कर रहे हैं। वो अपने पास सारी स्टैटिस्टिक्स है, आपको दिखा सकते हैं।
जैसे डाइवोर्स बहुत फ्रीक्वेंटली हो जाते हैं, ब्रेकअप्स, और उसको लेकर एक मेंटल ट्रॉमा रहता ही आजकल। सबसे बड़ा एक तरह से कहें तो डिप्रेशन की वजह ही है। तो वो ये सब चीज़ें अवॉइड हो सकें और रिलेशनशिप्स ना टूटे, उसके लिए कोई पर्टिकुलर कोई एडवाइस?
आप देखो कि दो बातें होती है जब संबंध होता, और न सिर्फ पति पत्नी के हिसाब से, जिसके लिए आपने ठीक कहा डिवोर्स भी, जब मैं छोटी थी नाम ही नहीं सुना था, हम फिर जब विदेश गए तो मैं सुनती रही, परंतु भारत में उसका नाम निशान नहीं था। फिर अभी ये 20 वर्षों के अंदर ये तो एक बहुत कॉमन बात हो गई है। पहले तो ओकेजनली किसी का सुनती थी, आजकल तो हर एक परिवार में, एक्सटेंडेड फैमिली में किसका भाई किसका कज़न, कहाँ ना कहाँ डिवोर्स की हवा लगी चुकी है। तो कारण क्या कि जो अंदर कैपेसिटी हो टॉलरेंस करने की, कुछ एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग की, वो ख़त्म हो गई है। क्योंकि वो इंटरनल पावर है ही नहीं, जो मैंने बैटरी डिस्चार्ज की बात कही थी। तो जो नॉर्मल सिचुएशंस भी है वो इतनी बड़ी लगती है, जो लगता है बहुत मुश्किल है। पहले आपने कुछ कहा, मैंने थोड़ा सहन कर लिया, मैंने कुछ कहा, आपने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, चलते चले, तो वो बात थी। आज जो इंटरनल टॉलरेंस कैपेसिटी नहीं है, और हम एक दो की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं, या हमारी माइंड इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, जो हम फोकस करके कंसंट्रेट करके किसी पर ध्यान दे करके उनकी बात सुनकर स्वीकार करें, वो भी कैपेसिटी ख़त्म हो गई है। तो मैंने देखा है कि कई यंग कपल्स जो आते हैं, जैसे ही दोनों, शायद एक पहले शुरू करता है फिर दूसरा करने लगता, परंतु जब दोनों आने लगते हैं तो फिर मैंने देखा है कि वो जो चेंज आ जाती है आपस में, किस प्रकार से रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहे, अंडरस्टैंडिंग रहे, वो बढ़ती जाती है। तो विदेश में, तो यहाँ भारत में तो मैंने इतनी सेवाएं नहीं की है, विदेश में अधिक की है, तो वहाँ पर तो कई कपल्स मुझे कहते हैं यदि हम योगी जीवन को नहीं अपनाते तो आज हम इकट्ठे नहीं होते। रियलिटी
जी, इंडिया में तो ये सब पहले कभी था ही नहीं, तो फॉरेन में तो ये चीज़ें नॉर्मल थी। लेकिन फॉरेन के बारे में दीदी ये भी कहा जाता है कि वहाँ की जो लोग होते हैं वो बड़े ऑनेस्ट होते हैं, इंडिया में ऐसा कंपैरेटिवली थोड़ा नहीं होता, ये ऐसा क्यों है?
वहाँ पर कल्चर ही ये है कि आपने डिवोर्स किया, सो व्हाट, इट्स ओके। तो फिर उसमें हम ऑनेस्ट होकर के रहें कि हाँ हमारा इस प्रकार से संबंध है, उसमें उन्हों को कोई एम्बेरसमेंट फील नहीं होती।
बट जनरली भी वो बड़े ऑनेस्ट होते हैं, आई मीन दे आर वेरी मच वोकल, बोल देते हैं और कुछ छुपाते नहीं है।
मतलब वो ये है, कल्चर ही वहाँ पर ऐसी है, जो जो बात मन में है बता दो, सो व्हाट्स द प्रॉब्लम।
जैसे शायद ये भी एक रीज़न कहा जाता है कि इंडिया में ट्रेडिशंस बहुत ज़्यादा हैं, आपकी बहुत ज़्यादा लड़कियों के लिए या फिर फैमिली में ऐसी बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ हैं। फॉरेन में ऐसा नहीं है, वहाँ पे तो 17-18 साल की उम्र में बच्चे निकल जाते हैं बाहर, तो इसलिए वहाँ पे एक ऑनेस्टी रहती है और वहाँ पे कोई ज़्यादा छुपाने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे लोगों, बच्चों में काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होती है जिसकी वजह से वो ज़्यादा गलत काम करते हैं। ये
हाँ, ये बात आप ठीक कह रहे हैं, वहाँ वो सप्रेशन नहीं होती। तो मुझे कुछ भी करना है तो मुझे फ्रीडम है, मैं जा कर के कर लूँ। तो आपने देखा, आपने सुना, इट्स ओके। वो कहेंगे, माँ बाप भी कहेंगे ठीक है, जवानी में ऐसे होता ही है। और यहाँ पर फिर एक और सिस्टम बनी हुई है ट्रेडिशन की, जैसे आप कहते हैं, तो सप्रेशन बहुत है। तो उसमें ऐसे नहीं है कि उनको मन नहीं करता कि मैं ये भी करूँ ये भी करूँ, मन में आता तो फिर छिपा के कर लेते हैं। ये बात सही है,
तो ये सही है गलत है?
दोनों कल्चर्स का फर्क है। और स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है, हर बात आप खुद ही सोचो, थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू डू। तो ये स्पिरिचुअलिटी की जो बात है वो वेस्ट चाहे ईस्ट दोनों में लागू है। आप पहले खुद ही थोड़ा विचार करके देखो कि इसका नतीजा क्या होगा। तो फिर जब आप इस प्रकार से स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर चलने लगते हैं तो आप खुद ही सोचते हैं, फिर आपको खुद ही लगता है कि नहीं ये बातें ठीक नहीं है।
जो सरेंडर्ड जो है यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में, पर्टिकुलरली मैं ब्रह्मा कुमारीज की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे रोज सुबह उठना पड़ता है, जो सरेंडर्ड जो है यहाँ बीकेस, क्या वो आपको लगता है कि सप्रेशन उनमें भी है?
क्या है, हम लोगों की सिस्टम भारत में बहुत अच्छी बनी हुई है। एक वर्ष तक तो वो सेंटर पर आते रहते हैं, फिर टीचर भी तो देखती है कि कहाँ तक इन्हों को लगन है, कहाँ पर इन्हों का इंटरेस्ट है, और फिर यदि इंटरेस्ट है और वो चाहते हैं तो हो सकता है कि एक वर्ष से भी जास्ती हो, 2-3 साल, जब उसके मन में खुद आता कि मैं ये ईश्वरीय सेवा में अपना जीवन दूँ, तो फिर उस घड़ी से फिर उसको 5 वर्ष सेंटर पर भी रहना होता, और फिर जो आबू में भी ट्रेनिंग्स चलती है उसमें भी आना होता। तो उस बीच में कई मौका बनता है जिसमें जो ट्रेनर्स है वो भी देख सकते कि ये इस मार्ग पर चलने वाले हैं या नहीं, और वो खुद को भी समझ सकते हैं ये हमारे काम की चीज़ है या मुझे और कुछ अपने जीवन चाहिए। तो 5 years इज़ अ लॉन्ग टाइम, मैं 5 मास की बात नहीं कह रही हूँ, 5 वर्ष की बात कह रही हूँ। तो वो खुद को भी समझ सके मुझे आगे अपने जीवन का क्या फैसला करना है, और फिर जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं वो भी देख सकते हैं कि हाँ जो अपने स्पिरिचुअल हिसाब से नियम बने हुए हैं उसमें फॉलो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसमें कहाँ तक कैपेसिटी है। तो फिर 5 वर्ष के बाद ही जो, तो फिर सप्रेशन की तो बात नहीं है, जिस घड़ी जिसने कहा मुझे तो अपने वापस घर जाना है, फाइन, नो प्रॉब्लम, उसमें कोई डिस्ट्रप्शन की बात नहीं आती है, कोई डिस्कशन की बात नहीं आती, वो खुद ही कहते हैं कि इस प्रकार से जीवन बिताना मेरे लिए कठिन है। तो फिर वो वापस अपने घर जाते हैं और दे कैन हैव अ लाइफ ऑफ देयर चॉइस, चाहे करियर करे, चाहे वो शादी करे, कुछ भी करे, इट्स अप टू देम। 5 साल के बाद जब वो सरेंडर होती है तो उसके बाद मैं समझती, आउट ऑफ 10,000 मे बी 1 पर्सन सेज आई वॉन्ट टू गो होम। ठीक है
दीदी, मेडिटेशन के बारे में वो आपने एक चीज बताई थी, जरा उसके बारे में आप।
जी, मेडिटेशन 3 सिंपल शब्दों में कह सकते, गोइंग इनवर्ड्स, खुद को जानना, और उस आत्म स्मृति में रहना, गोइंग अपवर्ड्स, अपना कनेक्शन परमपिता परमात्मा शिव ज्योति स्वरूप से बनाना, और फिर आउटवर्ड्स, जो मुझे अनुभव रहा है परमात्मा के द्वारा, वो सत्यता, वो प्रेम, वो शांति का, वो फिर किस तरह से हम अपने कर्मों में लाएं ताकि मुझे अपने कर्मों में परिवर्तन आ सके, और फिर जो मेरे साथी है या जो समाज है उन्हों को भी उससे प्राप्ति हो सके। तो मेडिटेशन सिर्फ मेरे लिए नहीं है, परंतु मेडिटेशन के द्वारा हाँ वो वाइब्रेशंस भी अनेकों तरफ पहुँचते हैं, परंतु साथ साथ कुछ परिवर्तन भी आना चाहिए। तो ये 3 शब्द बहुत इजी है, इनवर्ड्स, अपवर्ड्स, आउटवर्ड्स।
बहुत बहुत थैंक यू दीदी, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपसे फिर कभी मुलाकात हो जाए।
जी जरूर, आपने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू जी।
तो ये था हमारा दिल से दिल तक एपिसोड जयंती दीदी के साथ, जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ हमने समझा, मैंने बहुत कुछ सीखा, बीइंग अ यंगस्टर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे उन्होंने बताया कि मेडिटेशन को आजकल के ज़माने में कैसे यूज़ किया जा सकता है, कैसे यूज़ करना चाहिए। उन्होंने बताया कि लॉर्ड गणेशा जो होते हैं वो ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करते हैं, लेकिन ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करने के लिए, सिचुएशंस को टैकल करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है वो होती है हमारा खुद का मेंटली स्ट्रांग रहना। वो कहते हैं ना कि गुस्से में कभी भी कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, तो जब तक आपका मन एकदम शांत ना हो तब तक आप किसी भी सिचुएशन को टैकल नहीं कर सकते। कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं ले सकते। एक रिलेशनशिप को मेंटेन रखने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको सबसे पहले दूसरे इंसान को समझना पड़ेगा। सिचुएशन आएंगे लेकिन आप समझ तभी पाएंगे जब आपका खुद का मन शांत हो, फिर तो आप सामने वाले को समझ पाएंगे। तो चीज़ों को जितना सिंपल रखा जाए, वैसे ही मेडिटेशन को जितना सिंपली किया जाए, उससे बेहतर चीज़ और कुछ हो ही नहीं सकती। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको भी ये एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर आपको मिली होगी जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें। थैंक यू सो मच।